नमस्ते, मैं आराव हूँ। 903 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, ग्रेगरी बेटसन की स्टेप्स टू एन इकोलॉजी ऑफ माइंड, वर्ष 1972 में प्रकाशित निबंधों का एक प्रभावशाली संकलन है। इसमें मानव विज्ञान, मनोचिकित्सा, जैविक विकास, संचार और ज्ञान मीमांसा को अलग विषयों की तरह नहीं बल्कि परस्पर जुड़े पैटर्नों के रूप में देखा गया है। बेटसन का उद्देश्य मन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज तथा विचार और पर्यावरण के बीच मौजूद संबंधों को समझने की एक अधिक सावधान पद्धति प्रस्तावित करना है। पुस्तक किसी एक सीधी दलील वाला ग्रंथ नहीं है बल्कि कई दशकों में लिखे गए लेखों, व्याख्यानों और शोध पत्रों का संग्रह है। फिर भी इन्हें एक सूत्र जोड़ता है, अंतर संबंध, फीडबैक और संदर्भ के बिना कोई भी घटना ठीक से समझी नहीं जा सकती। बेटसन लैखिक कारणों की सहज व्याख्याओं पर प्रश्न उठाते हैं और दिखाते हैं कि संचार, सीखने तथा सामाजिक व्यवहार में परिणाम अक्सर चक्रीय प्रक्रियाओं से बनते हैं। इसलिए यह पुस्तक कठिन, बहुस्तरीय और सक्रिय चिंतन की मांग करने वाली बौद्धिक रचना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मन को अलग वस्तु नहीं संबंधों के पैटर्न के रूप में देखना। पुस्तक का केंद्रीय प्रस्ताव इकोलॉजी ऑफ माइंड है। बेटसन के लिए मन केवल व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर बंद कोई इकाई नहीं है। यह जीव, संदेश, पर्यावरण, आदत और प्रतिक्रिया के बीच चलने वाली संबंधात्मक प्रक्रिया में प्रकट होता है। इस दृष्टि से किसी परिवार का तनाव, किसी पशु का व्यवहार, भाषा का उपयोग या एक पारिस्थितिक तंत्र, सभी को उनके घटकों की सूची से नहीं समझा जा सकता। जरूरी प्रश्न यह है कि कौन किसको संकेत दे रहा है, कौन सी प्रतिक्रिया अगली क्रिया को बदलती है और व्यवस्था अपनी स्थिरता या परिवर्तन कैसे बनाती है। बेटसन विशेष रूप से अंतर को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सूचना कोई ठोस वस्तु नहीं बल्कि ऐसा अंतर है जो किसी अन्य अंतर को प्रभावित करे। इससे ज्ञान की सामान्य धारणा बदलती है। देखने वाला व्यक्ति निष्पक्ष कैमरा नहीं होता बल्कि जिन भेदों पर ध्यान देता है वही उसके निष्कर्ष को आकार देते हैं। यह विचार पर्यावरणीय समस्याओं में भी लागू होता है। यदि मनुष्य प्रकृति को केवल संसाधनों का ढेर समझेगा तो वह उन जटिल पारस्परिक निर्भरताओं को अनदेखा कर देगा जिन पर उसका अपना जीवन टिका है। पुस्तक इसलिए संबंधों की भाषा सीखने का आग्रह करती है। दूसरा, डबल बाइंड में विरोधी संदेश और संचार की मनोवैज्ञानिक उलझन। बेटसन और उनके सहयोगियों से जुड़ा डबल बाइंड सिद्धांत पुस्तक के सबसे चर्चित हिस्सों में है। इसका आशय ऐसी संचार स्थिति से है जिसमें व्यक्ति को एक ही संबंध के भीतर परस्पर विरोधी संदेश मिलते हैं और वह ना तो विरोधाभास को स्पष्ट कर सकता है न संबंध से सहजता से निकल सकता है। उदाहरण के तौर पर, शब्दों में निकटता की मांग हो लेकिन हावभाव या व्यवहार उस निकटता को अस्वीकार करे। समस्या केवल दो संदेशों का विरोध नहीं है, निर्णायक बात यह है कि व्यक्ति को यह बताने या पूछने की अनुमति न हो कि दोनों संदेशों में टकराव है। ऐसे बार बार दोहराए जाने वाले अनुभव अर्थ बनाने की क्षमता, भरोसे और प्रतिक्रिया को उलझा सकते हैं। बेटसन का योगदान यह था कि उन्होंने मानसिक संकट को केवल व्यक्ति के भीतर की कमी के रूप में देखने के बजाय संचार के संबंधात्मक संदर्भ में जांचा। हालांकि इस सिद्धांत को सिजोफ्रेनिया का पूर्ण या अकेला कारण मानना उचित नहीं है और आधुनिक मनोचिकित्सा इसे बहुकारकी अवस्था मानती है। फिर भी डबल बाइंड परिवार चिकित्सा संगठनात्मक संचार और सत्ता संबंधों के अध्ययन में उपयोगी है। यह सिखाता है कि संदेश के शब्दों के साथ उसके स्तर, संदर्भ और संबंध पर पड़ने वाले प्रभाव को भी पढ़ना चाहिए। तीसरा, साइबरनेटिक फीडबैक से रैखिक कारण की सीमा समझना। बेटसन साइबरनेटिक्स के सहारे कारण और परिणाम की सामान्य सीधी रेखा वाली समझ को चुनौती देते हैं। रोजमर्रा की भाषा अक्सर कहती है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को क्रोधित किया या किसी नीति ने एक समस्या पैदा की। बेटसन मानते हैं कि ऐसी व्याख्या अधूरी हो सकती है क्योंकि संबंधों में प्रतिक्रिया वापस लौटती है। एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे की प्रतिक्रिया बदलता है। वह बदली हुई प्रतिक्रिया पहले व्यक्ति के अगले व्यवहार को प्रभावित करती है और इस तरह एक चक्र बनता है। इस चक्र में किसी एक स्थिर आरंभ बिंदु को अंतिम कारण कहना भ्रामक हो सकता है। साइबरनेटिक विश्लेषण विशेष रूप से उन व्यवस्थाओं को समझने में सहायक है जो अपने को नियंत्रित करती है, जैसे जीवित शरीर, परिवार, संस्थान या पारिस्थितिक तंत्र। फीडबैक कभी संतुलन बनाए रखता है और कभी बदलाव को तेज करता है। बेटसन का जोर नियंत्रण की मशीननुमा धारणा पर नहीं बल्कि सूचना, सीमा और प्रतिक्रिया के पैटर्न पर है। वे यह भी कहते हैं कि पर्यवेक्षक को अध्ययन की व्यवस्था से बाहर नहीं रखा जा सकता। वैज्ञानिक के प्रश्न, वर्गीकरण और सांस्कृतिक मान्यताएं भी वर्णन को प्रभावित करती है। यह बात वस्तुनिष्ठता को त्यागने का आग्रह नहीं बल्कि अपने अवलोकन की सीमाओं के प्रति अधिक जिम्मेदार होने का आग्रह है। चौथा, सीखने के स्तर, संदर्भ और आदत बदलने की कठिनाई। पुस्तक में बेटसन सीखने को केवल सही उत्तर याद कर लेने की प्रक्रिया नहीं मानते। वे बताते हैं कि सीखना आरंभ में परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया है, पर इसका गहरा पक्ष यह है कि व्यक्ति किस प्रकार के विकल्पों को संभव मानता है। उनके सीखने के स्तरों का विचार इसी अंतर को स्पष्ट करता है। पहले स्तर पर व्यक्ति दिए हुए विकल्पों के भीतर चयन करना सुधारता है। दूसरे स्तर पर वह उन विकल्पों को समझने और बदलने लगता है जिनके भीतर वह लगातार चयन कर रहा था। इसे सीखना कैसे सीखें कहा जा सकता है। आगे का स्तर उन आदतों और संदर्भों में अधिक गहरा परिवर्तन सुझाता है जिनसे व्यक्ति का सीखना संचालित होता है। इस ढांचे का मूल्य यह है कि यह दिखाता है कि केवल व्यवहार बदल देना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। यदि वही संबंध, पुरस्कार, भय और अर्थ देने की पुरानी पद्धति बनी रहे तो पुराना पैटर्न नए परिवेश में भी लौट सकता है। साथ ही बेटसन परिवर्तन को सरल नुस्खा नहीं बनाते। गहरे स्तर का बदलाव अस्थिर करने वाला हो सकता है क्योंकि वह पहचान और संबंधों की परिचित संरचना को छूता है। शिक्षा, चिकित्सा और संस्थागत सुधार में यह विचार उपयोगी है क्योंकि यह परिणाम के साथ उस संदर्भ की जांच कराता है जिसमें परिणाम बार बार उत्पन्न होता है। अंत में सचेत उद्देश्य, पारिस्थितिक संकट और सीमित नियंत्रण का प्रश्न। पुस्तक के पारिस्थितिकी संबंधी निबंधों में बेटसन आधुनिक समाज की उस प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं जिसमें तात्कालिक सचेत उद्देश्य को सर्वोच्च मार्गदर्शक मान लिया जाता है। कोई व्यक्ति या संस्था किसी एक लक्ष्य को दक्षता से पाने की कोशिश में उस बड़ी व्यवस्था की उपेक्षा कर सकती है जिसमें वह लक्ष्य स्थित है। उदाहरणतः केवल उत्पादन बढ़ाने, किसी एक समस्या को तुरंत हटाने या शहर के एक हिस्से को सुधारने पर केंद्रित निर्णय दूरगामी सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम पैदा कर सकते हैं। बेटसन का तर्क यह नहीं कि उद्देश्य या योजना बेकार है। उनका प्रश्न यह है कि क्या योजनाकार उन फीडबैक चक्रों, सीमाओं और विलंबित प्रभावों को देख रहा है जिनसे व्यवस्था चलती है। प्रकृति पर नियंत्रण की भाषा अक्सर मनुष्य को व्यवस्था के बाहर व्यक्ति है जबकि मनुष्य उसी व्यवस्था का भाग है। इसी कारण वे लचीलापन को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी प्रणाली में विविधता, विकल्प और सुधार की गुंजाइश घट जाने पर वह छोटे झटकों के प्रति भी कमजोर हो सकती है। यह विश्लेषण आज ही पर्यावरण नीति, शहरी नियोजन और तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए प्रासंगिक है। पुस्तक तैयार समाधान नहीं देती बल्कि निर्णय लेने से पहले संबंधों के व्यापक जाल, अनपेक्षित परिणामों और स्वयं निर्णयकर्ता की भूमिका को देखने की बौद्धिक अनुशासन देती है। निष्कर्ष में स्टेप्स टू एन इकोलॉजी ऑफ माइंड उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, संचार अध्ययन, परिवार चिकित्सा, शिक्षा, साइबरनेटिक्स या पर्यावरण चिंतन में रुचि रखते हैं। यह त्वरित आत्म सहायता, सरल प्रबंधन सूत्र या एकरूप सिद्धांत की अपेक्षा रखने वाले पाठक के लिए सहज पुस्तक नहीं है। अलग कालखंडों के निबंधों का संग्रह होने के कारण इसकी भाषा, संदर्भ और कठिनाई का स्तर बदलता रहता है। कई तर्कों को धीरे पढ़ना और उनके बीच संबंध बनाना पड़ता है, लेकिन यही चुनौती इसका बौद्धिक लाभ है। पाठक घटनाओं को अलग व्यक्तियों की गजदी या एकल कारण के रूप में देखने के बजाय संचार, संदर्भ, फीडबैक और संबंधों के पैटर्न में देखना सीखता है। डबल बाइंड सीखने के स्तर और पर्यवेक्षक की भागीदारी जैसे विचार आज भी उपयोगी प्रश्न उठाते हैं, भले ही उन्हें आधुनिक शोध की सीमाओं के साथ पढ़ना चाहिए। समान विषयों की अनेक पुस्तकों के विपरीत बेटसन किसी एक अनुशासन की शब्दावली में सीमित नहीं रहते। वे जैविक विकास, संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी के बीच वैचारिक पुल बनाते हैं। उनकी विशिष्टता निष्कर्षों की सूची में नहीं बल्कि देखने की पद्धति में है। यह पुस्तक पाठक को जटिलता से भागने के बजाय उसमें पैटर्न, सीमा और पारस्परिक निर्भरता खोजने के लिए प्रशिक्षित करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ग्रेगोरी बेटसन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।